सफा नंबर 201। उन्होंने पूरा वाक्य सुनाया, सुना तो उनकी और बटालवी साहब की शायद इस सिलसिला में खतो खताबत भी हुई। वाक्य बहरहाल इसी तरह पेश आया जिस तरह मैंने बयान किया है कि नवाब मुजफ्फर खान और दूसरे हजरात गैर मुतवक्का तौर पर जुवेद मंजिल आए। हजरत अलामा से मिले, अपील के बारे में मशवरा किया। हजरत अलामा ने इससे इख्तराफ किया और बासबब ज़ोफ अदालत फिर ख्वाबगाह में आकर बिस्तर में लेट गए, मगर ये हजरात उनकी इजाज़त से देर तक बैठे रहे और फिर इंतहाई गलत बयानी से काम लेते हुए जिस पर हजरत अलामा ने फरमाया था हाजा बहुतान अजीम एक ऐलान शाया कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्री काउंसिल में अपील के बारे में जो मशवरा हुआ इसमें हजरत अलामा भी शरीक और अपील के हक में हैं। बटालवी साहब लिखते हैं कि न्याजी साहब इतफाकन वहाँ मौजूद थे, हालांकि मैं इतफाकन नहीं शब रोज़ वहाँ मौजूद रहता था। फिर ये कि हजरत अलामा ने इनके कान में कहा ये शख्स यानी वो शख्स जिसके मतलब ख्याल था कि यूनिट मुसलमान अराकीन में अनहदाम मस्जिद की जिम्मेदारी सबसे बढ़कर ऐद इस पर ऐद होती है, यहाँ क्यों आया है। हजरत अलामा ने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा और ना इस तरह चुपके से मेरे कान में कुछ कहना इनके शायाना शान था, वो ख्वाह इन्हीं इनका आना कैसा भी नागवार होता। फिर जब हजरत अलामा नशिस्तगाह से उठकर तशरीफ ख्वाबगाह में तशरीफ ले गए तो मैंने इन्हीं नहीं देखा, इसलिए कि दीवार की ओर थी और ये हजरत अभी बराबर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझा हजरत अलामा भी गुफ्तगू में शरीक है। फिर जब हजरत अलामा ख्वाबगाह में तशरीफ ले गए तो मुझे तलब भी नहीं किया। यही वजह है कि मैं अली बख्श से ये कहकर रुख्सत ले चुका था कि अली बख्श देर हो गई है। हजरत सफ़ा नंबर 202। अलामा से माजरत कर देना, अली सुबह हाजिर हो जाऊंगा। मैं इस ख्याल से कि हजरत अलामा का तकद्दर खातर रफा हो जाए बार बार कोशिश करता कि गुफ्तगू का रंग बदले, मगर मुझे खुद भी एहसास था कि इन हजरात ने हजरत अलामा को शदीद अज़ा पहुँचाई और वो भी मर्ज़ की हालत में कि इनके दिल पर ज़रा से सदमे का असर भी बड़ा अंदेशनाक था। फिर कतः नज़र इससे कि हजरत अलामा की राय अपील के हक़ में थी या नहीं, वो हर इस मामले में जिसका तल्लक इस्लाम और मुसलमानों से हो बड़े एहसास है, इनके इस एहसास का पास रखना ज़रूरी था, मगर मदीराने इनकलाब ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल हजरत अलामा ने रफ्तार रफ्तार खुद ही अपने तकदर खातर पर काबू पा लिया। वो बड़े आराम से बिस्तर में लेटे हुए थे, बल्कि उन्होंने दिल जमी से हुक्के के दो एक कश भी लिए। भाई हमा इन्हीं अफसोस का हिंदू जो लोग मुसलमानों की बेही खुआई का दम भरते हैं, इनके करतार में दयानत है ना सदाकत, शायद यही एहसास था जिसके ज़ेर असर उन्होंने चंद मिनट खामोशी के बाद फरमाया आज कल के दिलो सोज से खाली हैं। इनके इस अरशाद पर मुझे मौजूद सखन बदलने का मौका मिल गया। मैंने इनके इस कते के पेश नज़र उन्होंने अहले सियासत का मुकाबला अहले फलसफा से करते हुए इनकी चश्म बेनम का मातम किया, अर्ज़ किया। आप फरमाते हैं आजकल के दिल सोज से खाली है, लेकिन दिल में सोज पैदा हो तो कैसे, दिल में सोज है तो सखन भी सोज से खाली नहीं होगा। अपनी एक पुरानी गजल में भी आपने खुद भी तो कहा है फलसफी रा बा सियासत दा बैक मेजा मनसख चशम ओ खुर्शीद कोरे दीद ओ बेनमे ए तराशत कौल हक रा हज्जत ना अस्तवार वें तराशा कौल बातल रा दलील महकमे प्यामे मशरक। सफ़ा 203। फिर ये सब सियासतदान ही तो थे जो हजरत अलामा से मशवरा के लिए आए थे। सखन में सोज़े इलाही कहाँ से आता है, सखन में सोज़े इलाही हाँ से आता है, ये चीज़ वो है कि पत्थर को भी गुजार करे बांगे दरा। और फिर जवेदनामा में शहन रासोज इस खुजा ईद बगु इस खुदी या अस खुदा ईद बगो, यही सवाल दोहराया है मगर इसका जवाब नहीं दिया बजल इसके कि इसका सर चश्मा है आरजू। जाने मारा लज्जत अंदर जुस्तजू अस्त शहन रा अज मुकाम आरजू अस्त ए तू अज ता के सखन मस्त मदाम गर तेरा ईद मयसर ए मुकाम अजुद बहते दर झां संगे वश्त मी तो बर्दन दिल इस पूरे वश्त। जवेदनामा। हजरत अलामा ने मुतबस्सन होकर फरमाया इसका जवाब आसान भी तो नहीं, मैंने अर्ज किया लेकिन ये इस खुदी या इस खुदा का मतलब बजल इसके और क्या हो सकता है कि खुदी का वजूद खुदा से अलग नहीं और यही कुछ शायद आपका इरशाद भी है। सफ़ा नंबर 204। मैंने अर्ज किया आपका इशारा क्या अतसाद बेतकैफ बेकैस की तरफ है। अर्शाद मौलाना रूम, अतसाल बेकैफ बेकैस हस्त रबुल नास रबा जान नास और जमात अहमदिया से वाहदत वजूद की नफी हो जाती है। ज़ात बारी ताला मुहीद बरकुल है, लेकिन वरा अल वरा वहद और ला शरीक, लिहाजा वो क्या तल्लक है जो इसे मखलूक से है और जिसके बगैर मखलूक की हस्ती मुमकिन नहीं। फिर वो हमारी रगो जहाँ से भी ज़्यादा करीब है, इंसान और इसके कलब के दरमियान हायल। अल-अनफाल 24। अर्शाद हुआ, हाँ मैं एक लहजे के लिए ठहर गया। ऐसा मालूम होता था जैसे हकीकत मुतलका के अदराक और इसके तयन का एक जरिया निकला है। यूँ मेरा जहन इस मजमून के साथ मुंतकिल हो गया जो मैंने यौम इकबाल की तकरीब पर लिखा था। मैंने लिखा था, खुदी के लिए हमें खुदा को तलाश करना पड़ेगा और ये महज रायते लफ्जी की बिना पर नहीं बल्कि हजरत इलामा के इस शहर के पेश नज़र। अज हमा कस किनारा गिरे सोहबत अशनाए तलब, हम जा खुदा खुदी तलब, हम जब खुदी खुदा तलब। ज़बूरे अजम, इसलिए मैंने अर्ज किया, मंतकी एतबार से ये दलील कैसी है, क्या खुदी के इस्बात से खुदा का इस्बात लाजम आता है। फरमाया, ये दलील तो कुछ ऐसी ही है जैसी मुतकल्लमीन बिलअमूम पेश किया करते थे और जिनका सफ़ा नंबर 205 रुद तनकीद अक्ल महज में बखूबी हो चुका है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि खुद ही एक हकीकत है, अगरचा कायम बिज़ात नहीं, लिहाजा कायम बिज़ात की तलाश बरहल लाजम ठहरेगी। कांट के हाथों, इसलिए कि यूँ ज़ाते बाली ताला की मौजूदगी पर इसरार करना दरअसल एक मुगालता है। बसतला मंतक सदरा अलिल मतलूब के हमें जो कुछ साबित करना मकसूद है इसे साबित शुदा फर्ज कर लेते हैं। इस सिलसिले में दिलचस्प बात यह है कि जब कांट ने यह कहते हुए कि अकल महज नासा है हकीकत तक नहीं पहुँचती, शी बासारा और शी बजाता का इम्तियाज पैदा किया तो कहा गया कि यह भी तो मुसद्दर अलिल मतलूब ही की एक शक्ल है। कांट को कैसे मालूम हो गया कि एक तो शेय वो है जिसे हम इसे देखते हैं, यानी जैसे इसका इजहार हो रहा और एक वो जैसी कि फिल वाकया है लेकिन जिसका हमें इलम नहीं। ख्वा मुखालिफीन माबाद तबियात और मंतक असबातिमीन इसे लाहसल ही समझें, लेकिन जहन इंसानी का एक तकाजा है और बावजूद हमारी कोशिश के टालने से नहीं टलता। दूसरी सूरत यह है कि हम तशक्क और लाअरादियत का सहारा ढूंढे, यूँ बाद अफराद की तस्कीन खातर का सामान तो पैदा हो जाएगा लेकिन कारोबार ज़िंदगी नहीं चलेगा। तशक्क और लाअरादियत ना तो मुआशरे की कोई महकम असास है ना तहजीब व तमद्दन की। मैंने अर्ज किया, खुदी के इस्तेकाम में क्या खुदी का एहसास भी ज़रूरी है। फरमाया, क्यों नहीं। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो इन लोगों का अंजाम क्या होगा जिनको खुदी का एहसास है ना इसके इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम से मतलब। लिहाजा सवाल यह है कि हम इब्तदाई इंसान के बारे में क्या राय कायम करें या इन लोगों के बारे में क्या कहें जो खुदी के कायल नहीं। सफ़ा नंबर 206। मसलन मादियत परस्त या यही दुनियादार तबका है जो हयात दुनियावी में इस तरह खो गया है कि इन हकायक को खातर ही में नहीं लाता, वो बावजूद हकायक मजहबी के एक तरह से मादियत ही पर काने हैं। क्या इनके लिए भी हयात बाद मौत खुदी के इस्तेकाम पर वकूफ़ है। अर्शाद हुआ, बेशक। फिर जरा सकूत के बाद फरमाया, तुम्हारी नज़र इस हकीकत पर होनी चाहिए कि दुनिया में कोई शय नहीं है जिसे हिफ़्ज़ ज़ात की ख्वाहिश ना हो रही। ये बात कि इस ख्वाहिश का इजहार शऊर ज़ात के मुख्तलिफ़ मराहिल पर किस तरह होता है ये एक अलग मसला है जिससे यहाँ बहस नहीं, लिहाजा बकाए दुआम का अमकान हर शख्स के लिए मौजूद है। इस्लाम अबारत है फितरतुल अल्लाह से। देखिए तश्कील जदीद खुतबा चहरम बहस हयात बाद मौत। मैं अभी कुछ अर्ज नहीं करने पाया था कि हजरत इलामा ने पास ही रखे हुए तख्त की तरफ इशारा किया, फरमाया, देखो तुम्हारे सामने ये तख्त रखा है, तुम इसे उठाना चाहो तो नहीं उठेगा। लिहाजा हम कहेंगे कि इसका खासा भी ये है कि इसे कोई उठाना चाहे तो ना उठे, बाल्फाज दीगर इसकी मज़ाहमत करे, लिहाजा इसका ना उठना ही इसकी फितरत है। और हम कहेंगे कि इसकी यही फितरत यानी मज़ाहमत इसका इस्लाम है, बाइनी ज़िंदगी की भी एक फितरत है और हिफ्ज़ ज़ात इसका तकाजा, और जिसका एक पहलू हिफ्ज़ नफ्स और बकाए ज़ात की ख्वाहिश भी है। जवेद मंजिल में कदम रखती है तो बाइन जाना फाटक से मुलाक एक छोटी सी मस्जिद मिलेगी, आजकल मस्जिद इकबाल इसलिए कि हज़रत इलामा ने जब कोठी के लिए ज़मीन खरीदी तो ये मस्जिद टूटी फूटी हालत में थी। हजरत लामा ने इसे असर नौ सफा नंबर 207 बनवाया और इसके इर्द गिर्द दीवार फेंक दी। ये सब कुछ बल्दिया की इजाजत से हुआ। मुंशी खाना इसी मस्जिद के अकब में बना। अली बख्श का क्याम यहीं रहता था। मुंशी खाने के सामने एक छोटा सा बरामदा है और बरामदे के पास ही सहन में एक तख्त पड़ा रहता है जिसकी तरफ हजरत रामा इशारा कर रहे थे। जुवेल मंजर के बरूनी सहन का यह हिस्सा चूंकि सायादार और मस्जिद की ओर में था लिहाजा नशीस के लिए नहायत मौजू। हजरत रामा का पलंग अक्सर यहीं डाल दिया जाता था बिलखसूस सर्दियों में धूप के लिए। लेकिन हाल ही में डॉक्टर जुवेद इकबाल ने जुवेद मंजर की बरूनी दीवार इसके फाटक मस्जिद और मुंशी खाने में कुछ तरमीम कर दी है। मस्जिद बिलाई मंजर पर चली गई है। इस्लाम के एक मानी ये भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिस फितरत पर पैदा किया गया हम इसका अतबा करते रहें और वो फातर समावात वल अर्ध है और दुनिया जहाँ की हर शय इसकी फरमा बरदार के इसने जिससे जिस रास्ते पर डाल दिया है इसे इनहराफ नहीं करती। जिंदगी महबूबे ऐसी दीदा कुदरत में है ज़ौके हिफ़्ज़ जिंदगी हर चीज़ की फितरत में है। मांगे दरा मैंने अर्ज़ किया लेकिन हमारी खुद ही कायम बिल गैर है। हम अपने वजूद के लिए गैर के मुताहर हैं। लिहाजा एक तरफ हिफ़्ज़े ज़ात की ख्वाहिश है दूसरी जानब फना का खौफ। अरशाद हुआ ये सही है लेकिन इस तरह बकाए दवाम की नफी तो नहीं होती। सफ़ा नंबर 208 मैंने फिर कहा यह दुरुस्त है लेकिन असूलन खुद ही कुफानी ही ठहराया जाएगा। ये दूसरी बात है कि बासबाब इस तल्लक के जो हमें मतलब के खुद ही से हैं हमारे लिए बकाए दुआ का अमकान मौजूद है। बाय हमा हमें इसे क्या किया जाए कि हमारा जहन बार बार इस हकीकत की तरफ मुंतकिल हो जाता है कि जिस तरह पैदाइश से पहले खुद ही का कोई वजूद नहीं था बाइना मौत पर भी इसकी हस्ती शायद कालदम हो जाए। अरशाद बारी ताला है क्या तसूफ ने इसीलिए खुद ही को एक पर्दा ठहराया है वो आपका अरशाद इसके खिलाफ है। हजरत अलामा मिली जुली उर्दू और अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। इस सिलसिला में उन्होंने इमोरलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। खुद ही राह पर्दा मी गोई वाले मन बातों ऐ गोई मजन ऐ पर्दा रा चाक के दामान नगा तंग अस्त। ज़बूरे अजम फरमाया इसलिए तो मैंने लिखा है कि बकाए दुआम एक इनाम है हमारा हक नहीं। हमें चाहिए अपने आप को इसके लिए तैयार करें। फिर फरमाया बादी नज़र में तो यही मालूम होता है कि एक फितरत इंसान है दूसरी जानब ये मादी कायनात जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं वो खुद ही का तकाजा है। एहसास ज़ात और ज़ात का ये कि इसके बिलमुकाबल इसका कोई गैर मौजूद हो लिहाजा ये सफ़ा नंबर 209 कायनात जिसका हर जज अरमसक ता समाक इसकी तबीर व तकरीब में हिस्सा लेता है इसे गैर अपना गैर नजर आती है। बाई हमा यही गैर जिसे हम कायनात करार देते हैं बादी बकाए दवाम में हारज नहीं। मैंने एक तरह से कता इकलाम करते हुए कहा मगर जेन इंसानी इस गैर से मगलूब तो होता है। मेरा मतलब है मादियत से अरशाद हुआ कैसे मैंने अर्ज किया बतौर एक अमर वाक्य के और वो यूं कि खुदी का जहूर क्यों जो ना कायनात में होता है कायनात ही में वो नशनुमा हासिल करती है और कायनात ही में बिलाकर गुम हो जाती है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो कुछ कायनात की एक शान या इसकी मुखफ़ी और इसरार कुवतों का करिश्मा है। अरशाद हुआ ये सही है लेकिन कायनात क्या है बज़ाहिर एक मादी वजूद मगर जो मुमकिन है अपनी कहरा में रूह हो। जदीद साइंस के नज़रियात में इस बाब में बड़े मानी खेल हैं। हैगल ने कभी कहा था कि हकीकत मुतअल्लिका दरअसल एक ज़हन है। साइंस को अलबत्ता इस ज़हन के मुनफरद और सजावार इबादत होने से इनकार है। मतलब ये कि कायनात का ज़हन होना इस रूह साइंस महाल नहीं। फिर ये भी मुमकिन है कि ये ज़हन इनफरादी हो स्पिरिट में बामानी गैर मादी गोया जिस तरह मादा एक अजला है बाइना रूह भी फलसफियाना जुबान में मुलाहजा हो तश्कील जदीद खुतबा दोम बहस हकीकत मुतलका जदीद साइंस को मादियत पर इसरार नहीं रहा जैसे कभी था। जदीद साइंस में मादी या मादा अजसाम मसलन जौहर की हसीयत अलामत की है वो असमा हैं कोई मुस्तकिल बज़ात हकीकत नहीं। दरअसल जदीद साइंस का मौक़िफ़ यह है कि इसे बहस है तो आलम तबी के करदार से इससे नहीं कि इस करदार के पीछे क्या है या इसकी सफ़ा नंबर 210 हकीकत क्या है। और ये बात भी ठीक है क्योंकि हर इलम का एक मौज़ू है साइंस का मकसद है एक खास नुक्ता नज़र से कायनात का मुताला है, लेकिन इस नुक्ता नज़र के अलावा और भी दो नुक्ता हाय नज़र हैं और वैसे ही हमारी तवज्जो के मुस्तहक, ताकि हमें इसकी माहियत और किरदार का और ज़्यादा इलम हो सके। मुलाहिज़ा हो, इस सिलसिला में तशकील जदीद खुतबा दौम व हफ्तम, इसलिए कि यूँ इसमें सफ़ात अलमाहियत पैदा नहीं होती, लिहाजा हम ज़ात बारी ताला का इस्बात करें। मैंने अर्ज़ किया और कायनात इसका अमल, जैसा कि हज़रत अल्लामा ने फरमाया है, देखिए तशकील जदीद खुतबा दौम। फरमाया, बेशक मैक टैगरेट की राय इस बारे में क्या थी, यही कि मादे को मादा समझना गलत है, कायनात में वजूद सिर्फ खुद ही का है। बकौल हजरत अल्लामा, पैकर हस्ती ज़ा असारे खुद ही अस, हर चै मी बैनी ज़ा असारे खुद ही अस, इसरारे खुद ही। मैंने पूछा, और इसके नज़रिया इश्क की बिना किस बात पर है? इस बात पर कि इश्क ही जो जौहर है ज़िंदगी का, इश्क ही हमारे जुमला मसाइल का हल व मदावा है। ये हमारा तल्लक बहमी ही तो है, जिसकी बदौलत हम एक दूसरे से रबत व ज़बत और इतिहाद व इश्तराक पैदा करते हैं। इंसान का इंसान से मेल जोल एक दूसरे की उल्फत और मोहब्बत व मौद्दत रोज़मर्रा की बात है, और यही बात जिससे ज़िंदगी का कारखाना चल रहा है। हमारा कोई जज्बा इतना मुअस्सर नहीं जितना इश्क, इश्क की खातर इंसान। सफ़ा नंबर 211, बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेज नहीं करता, इश्क की हर शहर वजूद का सहारा है और इश्क ही बतौर एक असूल कायनात में कार फरमा है। मैक टैगरेट के इन ख्याल के लिए मुलाहिज़ा कीजिए हज़रत अल्लामा के मजमू व मज़ामीन में इनका मजमून। मैक टैगरेट फिलासफी में मैंने अर्ज़ किया, जब ही तो इसका ख्याल को तकवीत पहुँचती है कि हमारी खुदी मिलाकर एक बरतर खुदी में मदगम हो जाएगी। इरशाद हुआ, कैसे? मैं एक तरह से वहदत वजूद के नुक्ता नज़र की तर्जमानी कर रहा था, लेकिन हजरत अल्लामा ने यह सवाल किया तो ठटक कर रह गया, लिहाजा मैंने वहदत वजूद के इस आम तसव्वुर के पेश नज़र, जिसका तकाज़ा है कि कतरा दरिया में गुम हो जाए और हमारी हस्ती को कैद तायन से रहाई नसीबी हो, अर्ज़ किया कि हजरत आसी सिकंदर आबादी का शेर है, फ़राक व वसल के झगड़े में डालना मुझको जालम ने, गुबार हस्ती वहमी जो उड़ जाए तो बेहतर हो। अगर इश्क की असूल कायनात है तो खुद यूँ की वो कसरत जो इबादत है, मैक टैगरेट के पसे हुए वजूद से बासबाब इश्क एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, ताआंका एक दूसरे में मदगम हो जाए। इश्क का तकाजा है जज़्ब। अब अगर हम एक हमागीर खुदी का वजूद मान लिया जाए तो ये मानना भी लाजम आएगा कि जो भी खुदी है इसमें जज़्ब हो जाएगी, यानी अपना वजूद खो देगी। और ये कहते कहते दानस्ता अमीर खुसरो का ये शेर मेरी ज़ुबान पर आ गया, लिहाजा ना कोई वजूद मतलब है कि जुमला वजूदात की हसीयत। सफ़ा नंबर 212, इसके तायनात की हो ना कोई मुहित, बरकर खुदी के खुदी दूसरी खुदियों खुद यूं को हसारा दे। लिहाजा मैक टैगरेट की दोहरीत के खुदा का मुनकर है, मगर खुदी का कायल, मगर फिर इसका मतसूफाना अंदाज और विदान बकाए खुदी और इश्क के तसव्वुरात हैं, जिससे इसकी दहरीत ने भी एक मखसूस रंग अख्तियार कर लिया। वाज़त वजूद का तकाजा अगर फना फिर ज़ात है तो इसका एक जज्बाती पहलू भी है, और वो ये कि इंसान जब देखता है कि इसकी हस्ती फानी है, वो हर तरफ से मादी कुवतों के निरखे में घिरा है और ज़िंदगी का अंजाम है बिलाकर मौत, तो इसे इस ख्याल से बड़ी तस्कीन होती है, जिससे गुजर कर वो फिर इससे जा मिलेगा, गो ये भी एक बका की सूरत है। अब अगर वो वजूद सिर्फ मादे का होता तो जाहिर है इस किस्म की जज्बाती कफीयत का पैदा होना नामुमकिन था। मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जाने शुदी, ताकस नागोईद बाद अजी मन दीगर तो दीगरी। मैंने अर्ज़ किया, आम दिल पर मिसल भी यही है, दो कलम एक जान। हज़रत अल्लामा ने फरमाया, एक कलम दो जान कहा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अर्शाद हुआ, बाज़ बातें महज इजहार मतलब के लिए की जाती हैं, इनको मतकी दलाइल पर महमूल करना गलती है। ये दुरुस्त है कि खुदी का तकाजा है इश्क, इसलिए इश्क के बगैर, जिसे मैक टैगरेट का असूल कायनात करार देता है, खुदी में इस्तकाम पैदा नहीं होता। लेकिन अगर खुदी में इस्तकाम पैदा करना मकसूद है तो फिर इसके फना का कोई जवाब नहीं। यही वजह है कि जज्बा इश्क में जब हम फना पर जोर देते हैं तो इसका मतलब बजाय इसके कुछ नहीं होता कि हमारी तवज्जो सिर्फ इस चीज पर है जो इश्क का मकसूद है और जिसकी खातर हम सब कुछ भूल रहे हैं, लेकिन यूं फना के इस आलमे तसव्वुर पर इस्तदलाल करना गलती है जिसका मतलब है नफी ज़ात। इसके मानी तो ये है कि हमारी हस्ती हमारे मकसूद से है। सफ़ा नंबर 213। ये फना तो ऐन बका है। सूफिया इस्लाम ने भी इसीलिए बका को फना को बका से तबीर किया है। गोया फना से मतलब है हर इस चीज और रुकावट को दूर करना जो हमारे मकसद में हायल हो, ख्वा इसमें जान से भी हाथ धोना पड़े। शायद यही मानी है इस शेर के, कुछ तगान खंजर तस्लीम रा हर जमा इस गायब जाने दीगर अस्त। हजरत अलामा का भी अरशाद है, इशक अगर फरमा धद अज जाने श्री दर गुजर, इशक महबूब अस्त व मकसूद अस्त व जाने मकसूद निस्त ज़बूर अजम। हजरत अलामा ने थोड़ी देर के लिए सुकूत फरमाया, इन्हें आराम की ज़रूरत थी। इसी असना में अली बख्श ने दुआ खिलाई, चिलम बदली और हजरत अलामा के पांव दाबने लगा। यूँ जरा सस्ता कर हजरत अलामा फिर टेक लगा कर बैठ गए। इनका जी चाहता था मैं कोई बात करूँ, लेकिन मैंने महसूस किया हजरत अलामा थक गए हैं, इनसे और ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यूँ भी मुझे हजरत सालक व महर से मिलना था, मैंने इजाज़त तलब की, दोपहर कब की हो गई थी। शाम के करीब फिर हाजिर हुआ, हजरत सालक व महर से मुलाकात की कैफियत बयान की, अर्ज़ किया इन्हीं तरदीदी बयान शाया करने से इनकार है। वो कहते हैं ऐसा करना मुनासिब ना होगा, और फिर मुसलमान से मुलाकात की सारी कैफियत बयान कर दी। मैं इनकलाब के दफ्तर में पहुंचा तो अव्वल सालक महरूम से मिला, उन्होंने कहा कि मेरा तल्लक इन मामलात से नहीं, महर साहब से मिली है। महर साहब से मिला तो क्या इनका इरादा कानून शिकनी का है? मैंने कहा आपकी इस बात का जवाब तो हजरत अलामा ही दे सकते हैं मुझे तो। सफ़ा नंबर 214। सिर्फ इतना कहा है कि ये इनका बयान है और ये आपका इखलाकी फ़र्ज है कि इसे शाया कर दें, ताकि इस गलत ख्याल का अजाला हो जाए कि हजरत अलामा प्री कौंसिल में अपील दायर करने के हक में है, फिर ये बात आपके इलम में भी है। महर साहब ने कहा यह ठीक है कि हजरत अलामा की राय अपील के खिलाफ है, लेकिन बयान का शाया करना करी मुसहलत नहीं। मैं वापस आ गया। इस सिलसिले में लुत्फ़ की बात यह है कि बावजूद अपील का शाख सामना खड़ा करने के यूनिस्ट पार्टी के अरबाब हल व अकद ने अपील दायर नहीं की, लिहाजा हजरत अलामा का यह कहना क्या गलत था कि इन लोगों का अक्सर मकसद सिर्फ ये है कि वक्त गुजरता रहे, ये नहीं कि कुछ करें। हजरत अलामा ने जैसे जैसे मेरा बयान सुना इनकी कबीदगी खातर बढ़ती चली गई। इन्हीं रंज था कि मदीरान इनकलाब ने बावजूद दरीना रवाबत और दावी मौद्दत के इनका तरदीदी बयान क्यों शाया नहीं किया, वो एक झूठ को क्यों फ़रोग दे रहे हैं। मैं कुछ कहने ना पाया था कि अली बख्श चाय ले आया, हजरत अलामा ने चाय पी और अली बख्श इनके पांव दाबने लगा, तो मैंने इस ख्याल से कि इनका जहन किसी दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए अर्ज़ किया, मौलाना हुसैन अहमद के तरफदार कहते हैं कि मौलाना से ज़्यादा बा मुस्तफ़ी बरसा खुवेश पर अमल किसका होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौमें वतन से बनती हैं, कहा है तो ये कि जो लोग किसी वतन में बसते हैं अपने आप को एक कौम ही कहा करते हैं। हजरत रामा ने फरमाया तो यूं ही सही, हमें इनसे कोई जाति पर खास तो है नहीं, वो एक बयान शाया कर दें और साफ साफ फरमा दें कि इस्लाम की रोह से वतन बनाए कौमियत नहीं, वो ऐसा करें तो हम उनकी जुदत ईमानी के इतराफ में तीन की बजाय छः शहर कह देंगे। सफ़ा नंबर 215। अरशाद व एकरबाई हो रही है, त्यातन यादाश्त के तौर पर लिख लो। मैंने ब्याल उठाई और कलम दान लेकर बैठ गया। अरशाद हुआ नदानी नुक्ता दीन अरब रा के गोई सुबह रोशन तेरा शब रा, अगर कौम इस वतन बोदे मोहम्मद न दादे दावत दें बोला मेरा। अरशाद हुआ मगरब की लादीनी लोथर की तारीख से पैदा हुई, इसलिए कि जब असूल इक्तदार के जज्बे ने कलीसा की सियादत ख़त्म कर दी तो लाजमन किसी ऐसी एहसास की ज़रूरत पेश आई जो कौमों के निज़ाम इज्तमा को दर बरहम ना होने दे। यही ज़रूरत थी जिसने अहल यूरोप को वतन और वतन से नस्ल की तरफ मायल किया। आगे चलकर यही वतनियत तहरियत का सबब बने मौलाना हुसैन अहमद इस सादा सी बात को नहीं समझते, वो तरीक से नावाकफ़ हैं। लूथर की असल तरीक तो ये थी कि पापाए रोम की दीनी सियादत ख़त्म कर दी जाए, लिहाजा इसे तरीके इस्तलाह का नाम दिया गया था, लेकिन लूथर ने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि कलीसा की मजहबी सियादत का अगरचा इस रूबे मसीहियत कोई जवाब नहीं था, हम इसकी یہی سیادت ہے جس نے اقوام یورپ کو ایک نظام اجتماع میں منسلک کر رکھا ہے۔ یہ سیادت ٹوٹی تو انہیں کوئی دوسری بنائے اجتماع تلاش کرنا پڑی۔ مسیحیت کا نقطہ نظر محض اخلاقی اور انفرادی بلکہ رہبانہ تھا، سیاسی اور اجتماعی نہیں تھا۔ لہذا لوتھر کی تحریک اصطلاح نے بہت جلد ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور یوں لوتھر دا نستہ وطنی قومیت کا پیش رو ثابت ہوا۔ کلیسیائی نظام کی جگہ وطنی اور نسلی نظامات نے لے لی۔ وطنیت اور نسلیت سے رفتہ رفتہ دہریت کو تقویت پہنچی، اور ریاست کو میکا والی کے اصول سیاست کیا خوب کہا ہے حضرت علامہ نے، صفحہ نمبر 216۔ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماعتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانی و رہبی میں، چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری ہوئی، دین دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نہ مرادی، دوئی چشم تہذیب کی نہ بصری۔ لہذا طریقے اصلاح دراصل ایک سیاسی اور قومی تحریک بھی تھی، گو ابتدا میں اس کا اظہار مذہبی پرائے میں ہوا۔ کلیسا کو دعویٰ اقتدار تھا، مگر اس دعویٰ اقتدار کی بنا کسی اصول سیاست پر نہیں بلکہ پاپائیت پر، کہ پاپ اپنے دینی اقتدار سے کام لے کر ہر ملک کی سیاست میں دخل دیتا، بادشاہوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتا، مسیحیت کی دینی برادری سے خارج کرتا۔ یوں ہر طرف رشوت، خیانت اور بددیانتی کا دور دارہ ہونے لگا۔ ظاہر ہے یہ صورتحال دیر تک قائم نہیں رہ سکتی تھی، نہ رہی۔ میں نے عرض کیا اب تو ایشیا میں اس قسم کی دہریت کا اثر پھیل رہا ہے، اخلاقی قیود کچھ تو ٹوٹ چکی ہیں اور کچھ ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ جنگ سے قبل نہ یہ ذوق اریانی تھا نہ حسن کے مقابلے۔ ڈاکٹر جونز کا یہ کہنا کہ یہ زمانہ مرگ قلب کا ہے کس قدر صحیح ہے۔ قلب ہی زندہ نہیں تو تزکیہ ذات ہو یا تطہیر سیاست، اس کی توقع بےسود ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور وہ کیا نفسیاتی محرکات ہیں جس کے باعث انسانوں کے اخلاق اس طرح بدل گیا؟ ارشاد ہوا یہ جنگ کا نتیجہ ہے۔ جنگ سے اگر ایک طرف صفات عالیہ کو تحریک ہوتی ہے تو دوسری جنگ ادنا سے ادنا اور سفلی سے سفلی جذبات ابھر آتے ہیں۔ یوں بھی قتل اور خون ریزی کا نتیجہ اجتماعی لحاظ سے ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قومیں بے درائے ایک دوسرے پر ظلم ستم کرتی ہیں۔ انسان جب بے دردی اور صفاقی کے اور ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ زندگی نام ہے محض غلبہ و تغلب کا، اس میں کوئی اخلاقی، صفحہ نمبر 217۔ قانون میں کام نہیں کرتا، نہ دنیا کسی اخلاقی نظام کے سہارے چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جنگ پر پابندی عائد کر دی اور ایسے قوانین واضح کیے ہیں جن سے اخلاق کے عالیہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا اسلام کی زبان میں جنگ محض جنگ قتال نہیں بلکہ قتال فی سبیل اللہ، اور اس لیے امن و سلامتی کا ایک ذریعہ، تاکہ فساد فی الارض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور آخر الامر جنگ بھی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ میں نے عرض کیا آپ کا ایک شعر ہے، بازیا فن گا نوروے پلنگا می دھن شولا شاید زا فنوس حباب عید برو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سیاست ہو یا معاشی اخلاق ہو یا علم و حکمت، ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں، ہم ضعیفوں کو بھی کیا نروے پلنگا ملے گا۔ فرمایا بظاہر صورت حالات بڑی یاس انگیز ہے لیکن مایوسی کفر ہے۔ دنیا میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ ضعفوں کو قوت ملی اور عہدہ ملتی رہے گی، جیسے بنی اسرائیل کو کہ مصر میں غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو طاقت دی کہ ہم پاکستان قائم ہوا۔ یوں بھی ضعف کے بعد قوت اور قوت کے بعد ضعف طریق کا ایک عالمگیر مظہر ہے۔ اتنے میں منشی طاہر دین آ گئے، کچھ قانونی دستاویزات ساتھ لائے تھے، انہیں حضرت علامہ سے مشورہ مطلوب تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں جا کر بیگم حسین سے باتیں کرنے لگا۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میم شیم حضرت علامہ کی انگلیاں سہلا رہے ہیں۔ حضرت علامہ کے پیروکار اور دل و روز کے موجد نہایت مخلص، دیانتدار اور نیک منش انسان تھے، صفحہ نمبر 218۔ حضرت علامہ سے مخلصانہ وابستہ رہے۔ میں نے کہا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ محض حصول ثواب کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اس پر اعمال حسنہ کی گفتگو ہونے لگی۔ ارشاد ہوا انسان کو ہمیشہ اس امر کا احساس رہنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ خیال غلط ہے کہ اس کا اجر صرف آئندہ زندگی میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ ساتھ اس کو ارشاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے، और फिर अपने वालिद मोहतरम का एक वाक्य बयान किया। फरमाया, मेरे वालिद एक रोज़ घर आ रहे थे, हाथ में रुमाल था, रुमाल में थोड़ी सी मिठाई, असनाए राह में क्या देखते हैं कि एक कुत्ता भूख के मारे दम तोड़ रहा है। इसकी हालत ये हालत देख कर इनसे रहा ना गया, मिठाई समेत रुमाल इसके आगे डाल दिया। कुत्ते ने मिठाई खाना शुरू कर दी। मिठाई खा चुका तो ऐसा मालूम होता था जैसे इसे पानी की तलब है। वालिद माजिद ने इसे किसी न किसी तरह पानी भी पिला दिया। रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं तो एक मकान है जिसमें मिठाई के तबक ही तबक रखे हैं। सुबह आम खुली और तो इस एहसास के साथ कि ये इस नेक अमल का समर था जो कल इनसे सरजद हुआ। चुनचा इसी रोज़ से उन्हें यकीन हो गया कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। यहाँ पहुँच कर हजरत अल्लामा कुछ रुक गया, फिर कहने लगा, ज़रा ये भी सुन लो, इसकी इब्तदा ऐसे हुई। सफ़ा नंबर 219। अरशाद हुआ, हमारे वालद के दादा या परदादा पीर थे, इनका नाम था शेख अकबर। इन्हीं पीरी इसी तरह मिली के सन खतरा में सदात का एक ख़ानदान था जिसे लोग सैयद नहीं मानते थे, और इसलिए कि इन पर हमेशा तान और तशनी हुआ करती थी। इस ख़ानदान के सरबराह को एक रोज़ जो गुस्सा आया तो एक सब्ज़ कपड़ा ओढ़ कर आग में बैठ गए, जिसके मतलब रवायत थी कि हज़रत इमाम अलैहि सलाम की यादगार है। इसकी बरकत से आग ने इन पर कोई असर ना किया। मुखालफों ने ये देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि वो फिर वाकया सैयद हैं। इनका इंतकाल हुआ तो शेख अकबर ने इनके मरीजों को संभाला और ख़ानदान की खिदमत करने लगे। इसी एक मरतबा इसी ख़ानदान का एक फ़र्द वालद माजिद के पास आया और कहने लगे, आप धुस्सों की तजारत क्यों नहीं करते? इस ज़माने में मामूली धुस्सों की कीमत 2 रुपये फी धुस्सा से ज़्यादा ना थी। वालद माजिद ने कोई 200-400 धुस्से तैयार किए तो कुदरत खुदा की ऐसी हुई कि सब के सब अच्छे दामों पर बिक गया। हालांकि फी धुस्सा 8 आने से ज़्यादा लागत नहीं आई थी। 200-400 धुस्से फरोख्त हो गए तो काफ़ी रुपया जमा हो गया। बस ये इब्तदा थी हमारे दिन फिरने की। फिर भाई साहब भी मुलाजम हो गए। ज़िला सियालकोट में एक गाँव कश्मीरी ऊनी कंबल महकमा तमीरात आमा में। शाम कब की हो गई थी, हज़रत अल्लामा ने दवा खाई फिर खाना। इसके बाद चाय का दौर चला। कोई 9 बजे थे कि मिर्ज़ा मेराजुद्दीन आ गए। हज़रत अल्लामा का मिजाज पूछा और इधर उधर की बातों के बाद कल के जलसे यानी शहीद गंज के सिलसिला में अपील का वो शायद आए भी इसी गरज से थे। गोया एक तरह से बकार सरकार हज़रत। सफ़ा नंबर 220। अल्लामा बेतकल्फ़ी से अपनी राय का इजहार करते रहे। इस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल खुफिया पुलिस मिर्ज़ा साहब ज़्यादा देर नहीं बैठे, वो गए तो मैंने इजाज़त तलब की। चौधरी साहब तशरीफ़ ले आए थे, कर्शी साहब का इंतज़ार था। सफ़ा नंबर 221। सह शंबा 8 फरवरी। आज सुबह 2-1 कामों से फारग हुआ तो कोई 10 बजे के करीब हज़रत अल्लामा की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला। अली बख्श ने कहा, चौधरी साहब अभी उठ कर गए हैं, मालूम होता है ज़्यादातर गुफ्तगू इनकलाब की इस रवश ही की थी कि इसका तरदीदी बयान शाया ना करना असूल सहाफत के खिलाफ है। लेकिन फिर इत्मीनान था कि टेलीप्यून में इसकी अशात तमाम कमाल हो गई, लिहाजा कौम को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। हज़रत अल्लामा की कबीदगी खातर भी बड़ी हद तक दूर हो चुकी थी। टेलीव्यून लाहौर का मशहूर हिंदू और कांग्रेसी मसलक रोजनामा अब शायद अम्बाला से शाया होता है। मैं जब दफ्तर इंकलाब से निकला तो टेलीव्यून का रुख किया। हजरत अल्लामा का इरशाद था कि अंग्रेज़ी में भी इसके इनके तरदीदी बयान की अशात हो जानी चाहिए। इस ज़माने में हमारे तुर्क मवालात और जामिया के साथ थी जंग बहादुर सिंह टेलीप्यून के अमला अदालत में शामिल थे। टेलीप्यून तो यूँ भी इस बयान की इशारा करता, लेकिन मदीर मजकूर की वजह से इसे बड़ी नुमाया जगह दी गई। दूसरे रोज एहसान और शायद जिम्मेदार ने भी तरदीद शाया कर दी। फिर सवाल ये था कि मुसलमान हालात हल्का से सबक क्यों नहीं लेते? इनमें माशाल्लाह इल्म फजल की कमी नहीं। ये कहना तो गलत होगा कि वो हवाले आलम और सियासत हल्का से भी खबर हैं और इन हकायक को नहीं समझते जिन पर कौमों की जिंदगियां और इनके हिफ्ज़ो बका का दरमदार मुमकिन है। ये कहा जाए कि जिन हजरात ने मगरबी तलीम हासिल की है इनका ये हाल है कि इस्लाम की रायत से इन हकायक की तर्जमानी कर सकें ना कौम की कोई राह देखने के काबिल है। लेकिन हमारे उलमा अगर इन हकायक को समझते हैं तो वो इनकी ताबीर इस्लाम सफ़ा नंबर 222 के नुक्ता नज़र से क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज़ किया, फिर एक दूसरे बात यह है कि आपने इस्लाम की अकली तबीर में नफ्स इंसानी या किसी और माबाद तबई मसले मसलन हयात बाद मौत या जमा व मकान के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है उलमाए इस्लाम बज़ाहिर इनसे बेगाना नज़र आते हैं। इन्हीं आपके ख्यालात से कोई दिलचस्पी भी नहीं, वो समझते हैं कि ये महज फलसफियाना अफकार हैं या सियासी और अमरानी तस्वरात जो यूरोप से आए हैं। हालांकि आपने जो कुछ कहा इस्लाम ही की बिना पर कहा, उल्मा आपकी बात नहीं समझते, तो क्या इसलिए कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू इनसे मुख्तलिफ है या इसलिए कि आपने जिन हकायक को उजागर किया है हम अब तक इनसे बेखबर थे। हज़रत अल्लामा ने मेरी बात सुनी तो फरमाया, ये कहना उलमाए इस्लाम इन हकायक से बेखबर थे सही नहीं, वो इस सिलसिले में बहुत कुछ लिख चुके हैं, इनकी नज़र हर बात पर थी, वो तहजीब और तमद्दन और इज्तमा व इमरान के मसाइल से गाफल थे, ना इल्म और हिकमत और ना बाद तबई अफकार से जिसमें कुरान मजीद ने इनकी रहनमाई की। ये इन्हीं का तो कहना था कि कुरान मजीद खलासा कायनात है, रशाद हुआ कुरान मजीद ने कहा है शजर व हजर सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। मैंने कहा लेकिन हम इनकी तस्बीह नहीं समझते, जैसा कि हजरत अलामा ने अंग्रेज़ी में फरमाया ये सही है, लेकिन तुम इस हकीकत को इस तरह समझो जैसे मैंने इसरार को दी में लिखा है, सब्जा बर देन नमो रुदाद अस्त, यानी इसका दीन या दूसरे सफ़ा नंबर 223 लफ्ज़ों में इसकी फितरत है नमो, लिहाजा ये नमो ही इसका इस्लाम है। तस्बीह का मतलब है ज़ाते अलाही की पाकीज़गी का इकरार और सजदा अबारत है इसकी अतात से, लिहाजा कायनात का हर जर्रा ज़ुबान हाल से हकीकत मुतलका की तेज़ या तज़िया करता है और इसकी अतात का दम भरता है। फिर ये अमर इस हकीकत का भी इकरार है कि हम अपनी हस्ती के लिए सिर्फ इसी के मुताले में खामोश रहा, अर्शाद हुआ मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो तुम जो मुझसे पहले किसी ने ना कही हो, कोई नई बात कही है तो सिर्फ यह कि वो हकीकत जिसे हम खुद ही से तबीर करते हैं जो बढ़ती फैलती नमो पाती ताकत और कुदरत हासिल करती है, वो एक ऐसा अमल है जिसके मादी हयाती और नफ्सियाती कवानीन की नवीयत कुरान पाक ने वाज़ह अल्फाज में बयान कर दिया। मुफक्किरीन इस्लाम ने अलबत्ता इस बाब में जो गलती की वो ये है कि यूनानियत के ज़ेर असर इस नुक्ते को नज़रअंदाज कर दिया जो खुद ही में मुज़मर है। खाकानी ने क्या खूब कहा है, मालूम होता है इसी अहद के किसी मुबसर के ख्याल हैं, मरकब दीन के जद्दा अरब अस्त दागे यूनानश बरकफल मुनहीद। हज़रत अल्लामा ये वज़ाहत फरमा चुके थे कि इनके ख्यालात का सरचश्मा सूफिया कराम की अरशदात और उलमाए फ़लसफ़ा इस्लाम की तहरीरों में तलाश कीजिए, भाई हमा मुसलमान की हदायत फ़िक्र से इनकार करना नामुमकिन है। मुलाहिज़ा हो तश्कील जदीद खुतबा अव्वल व चहारम और इसके बाद दूसरा शेर है मशते अतफ़ाल नौ तलीम राह लो अदबार दर बगल मुनहदी। चुनचा इसके कुछ दिनों बाद हज़रत अल्लामा ने मौलाना हुसैन अहमद के जवाब में जो बयान शाया किया इसमें ये दोनों शेर शामिल थे।